Genesis chapter 29, उत्पत्ति उसके 29 अध्याय। अब्राहम है, इजाक है, इजाक के बाद याकूब है, याकूब और ऐसा दोनों भाई हैं। लेकिन किस प्रकार से ऐसा से धोखा किया, छल किया, लेकिन ऐसाओ की भी गलती रही और उस गलती के कारण ऐसाओ परमेश्वर की आशा से वंचित रह गया। और जो हमने इब्रानी उसका 12 अध्याय पढ़ा, लेकिन 14 पद में से यहां लिखा है, सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देखेगा। इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 14, 15 पद, ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। तुम में से कोई भी व्यक्ति दुराचारी या ऐसा के दृश्य ना हो जिसने एक बार भोजन के लिए अपने पैलेट का अधिकार बेच डाला। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर ना मिला। कितनी दुखदायी बात है, एक बार भोजन के कारण लालच, किसी भी प्रकार का लालच कई बार मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। और हमें बहुत अधिक प्रार्थना करना चाहिए। एक बार एक मीटिंग में था मैं, और वहां पर भोजन का समय था, लंच का समय था, और किसी भाई से कहा गया कि इस भोजन के लिए प्रार्थना करिए। और तब भोजन के लिए भाई प्रार्थना करने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो, आपने आशीष दी, यही करा जैसे करते हैं। और लेकिन उस प्रार्थना में उसने एक बात और कही कि प्रभु जब हम इस भोजन को खाते हैं कि इसके लालच के पाप से हमें बचाइएगा। मैं चौंक गया, मैं सोचने लगा क्यों इसने ऐसी प्रार्थना करी। वो प्रार्थना में अक्सर लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये भाई ये प्रभु के सेवक थे और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें इस भोजन के लालच के पाप से बचाइएगा, क्योंकि कई बार लालच के कारण पेट हमारा इतना होता है, खाते हम इतना है, और बाद में फिर वो हमारे तकलीफ का कारण बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा जो प्रतिदिन के जीवन में हमारे संपर्क में रहता है। सो किसी प्रकार कोई भी चीज हो, सो यथाओं के लिए नए नियम में इब्रानियों का लेख कितने दुख की बात कहता है कि कितना वो कह रहा है उसके लिए। और एक शब्द जो उससे तुलना की जा रही है, दुराचारी, इससे कठोर शब्द किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। सो मुझे और आपको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम रोज इसका सामना करते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, मान, पद, धन, सम्मान, भोजन, वस्तुएं, बहुत कुछ है, धन, बहुत सारी चीजें जहां हम सामना करते हैं। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे इस लालच के पाप से बचाइए। और उसी कारण उसने अपनी वो आशीष जो परमेश्वर उसको देना चाह रहा था उससे वो वंचित रह गया, वंचित रह गया। तो हमें कुछ चीजें प्राप्त तो हो जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है शायद हम उससे वंचित रह जाते हैं। सो ये ऐसाव का जीवन था। अब याकूब को परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि याकूब ने अपने जीवन में एक बात को सोचा हुआ था कि परमेश्वर से बात करने बाद उसने खुले रूप में स्वर को देखा है, स्वर से उसने परमेश्वर को, यहोवा को उतरते देखा है। उसको कह रहा है कि द्वार स्वर का द्वार है, और मैंने पिछली बार आपके साथ इस बारे में शेयर करा था। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, विश्वास जागृत हुआ है, और विश्वास के कारण वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा, जैसे पिछली बार भी मैंने, परमेश्वर ने याकूब को स्पष्ट आवाज दी, उसने स्पष्ट उस आवाज को सुना और सुनकर कुछ देखा भी उसने, और इसीलिए जब हम वचन को तो वचन को कान से सुनते हैं, मस्तिष्क से हम समझते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और जीवन उसके प्रति समर्पित करते हैं। यह विश्वास है, यह विश्वास है। आप यहां पर आते हैं, परमेश्वर के वचन को हर रविवार सुनते हैं, भाइयों से बात करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, किसी न किसी तरह से वचन आपके और मेरे जीवन में आता है, अंदर आता है। तो विश्वास सुनने से, जब वचन हम सुनते हैं कान के द्वारा, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, और तब आंखें खुलने बाद हम उस वचन को मस्तिष्क से समझने लगते हैं, हमारी बुद्धि उस वचन को समझने लगती है। अगर हम वचन को समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी आप मुझे समझ दीजिए ताकि मैं आपके वचन को समझ सकूं। यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना लाना के बहुतायत से तुम्हें दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं और अगर आपको वचन पढ़ने में समझने में मुश्किल होता है तो प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी आप अपने वचन को मुझे समझाइए। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी सहायता करेगा। वचन के लिए रुचि नहीं है, प्रभु आप में वचन के लिए रुचि दीजिए। और तब हम न केवल मस्जिद समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, जैसे जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, और तब हम उसके बाद जीवन को समर्पित करते हैं। सो ये अनुभव उसके जीवन में आ गया था, अभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि उसका ध्यान लगा हुआ था आगे कि मुझे वहां जाना है। अगर आप 22 पद को पढ़ेंगे तो वो 22 पद में लिखा है, और वो पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वो परमेश्वर का धाम ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दूंगा, मैं जब वापिस आ जाऊंगा तो मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन वहां पर ठहर कर उसने नहीं पूछा, प्रभु तूने अपनी आवाज दी मुझे, तूने मुझे बताया है, लेकिन मैं तो वहां जा रहा हूं, क्या आपकी कोई और इच्छा मेरे लिए है, उसने वहां नहीं पूछा। और कितनी बार जब हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में, हमारे विचार में पहले से कुछ चीज बसी रहती है, तो शायद जैसे हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, हम उससे वंचित रह जाते हैं, वो नहीं पूछने पाते। और तब उसके बाद 29 अध्याय में ये याकूब की एक यात्रा आरंभ होती है, तब वो आगे बढ़ता है। अभी लगभग 40 किलोमीटर चला है, और 40 किलोमीटर में वो शायद एक दिन में उसने पूरा किया, अभी उसको 310 किलोमीटर की और यात्रा करनी है, सब मिला के लगभग 350 किलोमीटर की दूरी थी। अब रात में सोया, क्या दर्शन माने नहीं, इसके बाद 20 साल तक परमेश्वर ने उसे बात नहीं करी, इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। अभी हम उसको देखेंगे। जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अपना द्वार दिखा दिया, तब भी उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, अपनी कंडीशन परमेश्वर के सामने रख दी, परमेश्वर की बात को सुनने के लिए सब कुछ परमेश्वर से कह रहा, मैं ये करूंगा। हमने 7 बातों को देखा था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसने एक बार ये नहीं पूछा, परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। और तब उसके बाद वो यात्रा आरंभ करता है, क्यों, वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। उसने उसको चुन लिया था, और इसलिए जब कुछ चुन लिया था तब वो परमेश्वर उसको अनुमति तो दे रहा है कि तू ठीक है, तू जा। लेकिन इस 20 सालों में परमेश्वर ने उसको एक कठोर अनुशासित जीवन में से होकर आगे बढ़ाया है, कठोर अनुशासित जीवन, कहना चाहिए एक स्ट्रांग डिसिप्लिन परमेश्वर के, वो 20 साल होकर गया है। सो ये यात्रा की अध्ययन जो है बहुत सुंदर है। अब क्या होता है आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं कहानी के रूप में समझाता जाऊं, क्योंकि पढ़ता जाऊं तो लंबा होता चलेगा, बीच बीच में कुछ पदों को मैं आपके सामने ला दूंगा। और तब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि पाप का स्वभाव, मुझे और आपको भी उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पाप के दंड से तो छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन हमें पाप की शक्ति और पाप की फंसी से हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए तो पौलुस कहता है रोमियो के साथ में, जो कार्य मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे बन पड़ता है। ऐसी दशा में करने वाला कौन है? वो पाप जो मुझ में बसा हुआ है। और मेरे भाइयों, हम मानव शरीर में, मानव जीवन में हम निरंतर हमें पाप से संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उसी समय हमें सिखाता भी है। और इसीलिए इब्रानियों ने जो 12वां अध्याय में पढ़ा, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। और ताड़ना करने के कारण, बहुत सुंदर वो स्थल है, ताड़ना करने के कारण वो परमेश्वर मनुष्य को बनाता है। वो हमारा एक कुमार है, एक कुमार है। जब मैं शुरू में लखनऊ में आया और मैंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद बाइबल पढ़ने लगा, तो मैंने यशायाह पढ़ा कि परमेश्वर हमारा कुमार है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन को निर्माण करता है, मेरे दिमाग में आया। तो डालीगंज के पास उस समय आईटी कॉलेज के आगे डालीगंज चला, वहां पर बहुत उस समय कुमार होते थे, तो मैं वहां चला गया। 12वीं भी मैंने ऐसे किया, और तब मैंने वहां जाकर देखा कुमार कैसे बर्तन को बढ़ाता है। उस समय बहुत ज्यादा खच्चर और गधों में मट्टी लाई जाती थी, मैं सन 75-76 की बात आपको बता रहा हूं। और तब मैंने देखा कि वो मट्टी को लाते थे, खच्चर में लेकर आते थे, और मट्टी को सड़क पर फैला देते थे, और दिन भर मट्टी में कई गाड़ियां उसके ऊपर से जाती थी, और तब शाम को वो कुमार जो है मट्टी को बटोरता था, अर्थात जो ढेले होते थे वो उन गाड़ियों से वो दब दब के टूटने लगते थे। जब कुमार किसी पात को बनाता है तो सबसे पहले वो मट्टी में ढेलों को तोड़ता है, वो कठोरता को तोड़ता है। और मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन में ऐसे ही करता है। तो वो उस मट्टी को बटोरता है, और बटोर के तब उसको गूंदने लगता है, और जब हाथ से गूंदता है गूंदते गूंदते, तब उसके अंदर और कंकरें निकलती हैं, तो वो कंकरें को निकालता है। मैंने बैठ करके इन सारी चीज को बहुत अच्छी तरह से वॉच किया, ध्यान से देखा है, और तब किस प्रकार से, और अगर चाक में रखकर वो कोई पॉट बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, अगर वो बिगड़ जाता है तब भी वो मट्टी फेंकता नहीं है, वो फिर उसके मट्टी को समेटेगा, गूंदेगा, करेगा, और फिर उसके चाक पे रख के दोबारा एक बर्तन बना देगा। वो कुमार मट्टी के जो बर्तन बना रहा है उस बर्तन के, वो मट्टी को फेंकता नहीं। अगर एक संसारिक कुमार, बाइबल के जो उदाहरण है ना वो व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। अगर एक कुमार इस मट्टी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो हमारा परमेश्वर जो मेरा और आपका सृष्टि करता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, लहू बहाया है, कीमत चुकाई है, तो क्या वो मेरे और आपको अपने हाथ में लेकर वो पात्र नहीं बनाएगा जो उसके लिए उपयोग हो सके? और वही काम ये यहां पर याकूब के जीव में कर रहा है, याकूब के जीव का। अभी याकूब नहीं समझ रहा, याकूब ने विश्वास किया लेकिन अभी अपने आप को समर्पित नहीं किया। और कितनी बार हम विश्वास कर लेते हैं लेकिन यीशु को हम समर्पित नहीं करते हैं। तब ये आप आगे बढ़ा, तो जब ये आगे बढ़ रहा है अपनी यात्रा करने के बाद, और उसको दूर से कुआं दिखाई दिया, दूर से देखा दिखा यहां पर कुआं है, और कुएं के पास कुछ भेड़ है, झुंड है, और लोग हैं वहां पर, तो जो वहां पर पहुंचता है, और तब उसने 29 अध्याय का 4 पद में लिखा हुआ है, तब याकूब ने उनसे कहा, हे मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम उसे जानते हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या वो कुशल से है? जैसे उसने पूछा कुशल से, इन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, वो सकुशल है, और देख उसकी पुत्री राहेल भेड़ बकरियों को लेकर आ रही है। वो कुशल से है, और ये चरवाहे लोग थे, इन चरवाहों ने देखा, और देखकर एकदम इशारा किया, देख वो राहेल जो चली आ रही है, कि राहेल चरवाहिन थी, उसका काम था वो भेड़ों को और उनको चरवाहती थी। और क्या होता था, वो भेड़ों को लेकर आते थे, और जब सब भेड़ कुएं के पास इकट्ठा हो जाते थे, तब समय के अनुसार, क्योंकि बहुत बड़ा उस पर भारी ढक्कन होता था, और तब उसको ये चरवाहे मिलकर के ढक्कन हटाया करते थे, तब बारी बारी उन भेड़ों को पानी पिलाया जाता था, ऐसा होता था। और तब उन्होंने कहा कि देख वहां से वो चली आ रही है। और जैसे उसने देखा, लिखा हुआ है सातवां पद में, उसने कहा देखो अभी तो दिन बहुत है, ये पशुओं को इकट्ठा करने का समय नहीं है, भेड़ों को पानी पिलाओ और जाकर उन्हें चराओ। परंतु उन्होंने कहा हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सारे झुंड इकट्ठे होते हैं तभी कुएं के मुंह के से पत्थर लुटकाया जाता है और हम भेड़ों को पानी पिलाते हैं। जब वो उनसे बातचीत कर ही रहा था तो राहेल अपने पिता की भेड़ों को साथ लेकर आ गई, और वो वहां पर वो एक चरवाहिन थी। और तब क्या हुआ, तब याकूब ने उससे मिला, संबंधी था, उसको गले लगाया, चूमा और उसके साथ उसके पिता का हालचाल पूछा और इनको पानी पिलाया, भेड़ों को पानी पिलाया। जब भेड़ों को पानी पिलाया और तब वो दौड़ कर गई, अपने पिता को बताया फुफेरा भाई आया है, रिबका का पुत्र है और आया, उसने ऐसा ऐसा करा है। तब उसने अपने घर बुला लिया। जब गुरा घर बुला लिया, अब याकूब लाबान के यहां गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा लाबान विश्वासी नहीं है, लाबान विश्वासी नहीं है, अभी आगे चल के स्पष्ट होगा। लेकिन ये वहां चला, एक महीने रहा। जब एक महीने रहा, इसने बहुत अच्छी तरह देखभाल करी, लाबान भी प्रभावित हुआ, इसने भी सोचा मुझे यहां रहना है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी, मुझे अब राहेल को देखकर उसके जीवन उसके अंदर कुछ कुछ हो गया, तुम्हें देखा तो कुछ कुछ हो गया, जवानों की सब जगह कहानी है, यह भी जवानी था। ठीक है, उसने कहा एक महीना मैंने तेरे कर लिया, अब तू क्या कहता है, 15 पद में लिखा हुआ है। तब लाबान ने याकूब से कहा क्या तू मेरा कुटुंबी होने के नाते मुफ्त ही मेरी सेवा करता रहे, मुझे बता तेरी मजदूरी क्या होगी। लाबान तो सोचा था कुछ मजदूरी मांगेगा, कुछ ये मांगेगा, लेकिन याकूब के मस्तिष्क में, याकूब के मन में तो कुछ और बसा हुआ था। उसने कहा लाबान की दो बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की आंखें धुंधली थी परंतु राहेल देखने में सुडोल और सुंदर थी। याकूब तो राहेल से प्रेम करता था, एक महीने में ही, ज्यादा समय नहीं लगता। तब क्या हुआ, आता उसने कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तक तेरी सेवा करूंगा। इस राहेल को पाने के लिए उसने कुछ नहीं ध्यान दिया, कुछ नहीं सोचा, घर से दूर था, घर के बारे में उसको भूल गया, परमेश्वर से बात करी थी उसके बारे में भूल गया, सब कुछ भूल गया, दिमाग में तो केवल कौन है, राहेल है। सावधान रहिए जवान बच्चे, बहुत ही हम यहां पर हैं, हो सकता आपके सामने भी कोई राहेल हो, कोई याकूब हो, सावधान रहिए। लेकिन क्या हुआ आगे चलके, 7 साल लिखा हुआ, उसने 7 साल इतना परिश्रम किया, लेकिन उसको 7 साल का समय ज्यादा लंबा नहीं लगा, उसको 7 साल का लिखा है 20 पद में। इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक सेवा की और राहेल से प्रेम के कारण ये वर्ष उसे थोड़ी ही से जान पचे। लेकिन इन 7 सालों में उसको कठोर परिश्रम करना पड़ा, पर परमेश्वर क्या कर रहा है इसको, परमेश्वर ने एक बार इससे बात नहीं करी, मैंने कहा 20 साल तक परमेश्वर ने से बातें नहीं करी। ठीक है ला याकूब, तुझे जो करना कर ले, तू अपनी इच्छा पूरी कर, अपनी मर्जी से चल। और कई बार परमेश्वर हमें अपनी मर्जी से चलने देता है, क्यों, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुना था, उसने परमेश्वर के स्वर के द्वार को देखा था, लेकिन अभी भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया था, विश्वास से जागृत हुआ था, लेकिन कुछ बार काम बाकी था जो नहीं हुआ था। और कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हम विश्वास का दावा तो करते हैं, विश्वास तो होता है, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो शायद हमारे जीवन में नहीं होने पाता, और इसलिए हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने नहीं पाते, उसकी चीजों को जैसे चाह रहा हो नहीं करने पाते, परमेश्वर कहता जाओ। लेकिन क्या होता है, जब 7 साल पूरे हो गए, सबसे पहला धोखा उसके सामने हुआ। उसके पिता ने, राहेल के पिता ने, लाबान ने उससे पहले नहीं कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब 7 साल हो गए, अब विवाह का समय आया, तो उसने अपनी बेटी, बड़ी बेटी लिया से उसका विवाह करा दिया। अब वो कहने लगा, अरे मैंने तो 7 साल राहेल के लिए परिश्रम किया था और ये तो मुझे बहुत थोड़े लगे थे, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा किया है। उसने कहा हमारे यहां विधि है, ध्यान दीजिएगा, कि पहले बड़ी पैलोठे का अधिकार हो जाए। मां उससे पैलोठे का उसने हक छीना था, यहां उसके छल के साथ उसको उसी पैलोठे को सामने गले लगाना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, जैसा तूने किया है तेरे सिर पर लौटा दिया जाएगा। हमें मसीह जीवन को बहुत सरलता से नहीं, बहुत गंभीरता से लेना है। तब उसके बाद उसने फिर मेहनत करी, 6 साल फिर व्यतीत हुआ। जब 6 साल फिर व्यतीत हुए उसके बाद तब राहेल का उसका विवाह होता है, तो अब 7 साल, तब 7 और 7 14 साल, 14 साल उसको यहां पर हो गए। लेकिन 14 साल पढ़ने में सरल लगता है, लेकिन उसके लिए सरल नहीं था। उसको उनकी भेड़ों को चराना पड़ता था, उनको पानी पिलाना पड़ता था, सब कुछ चराना पड़ता था, सारे उनको देखभाल करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था। यह जरूर था कि जब उसका विवाह हो रहा था तो उस समय ऐसा होता था कि विवाह के समय में जैसे आजकल पहले साइकिल दी जाती थी, फिर बाइक आ गई, फिर आज 4 पहिए की गाड़ी आ गई, उस समय खच्चर और घोड़े मिलते थे, गधे मिलते थे, ये उनकी पूंजी होती थी। और इसीलिए जो उनका धनवान होना उसी से गिना जाता था, अय्यूब के भी हम उसमें पाते हैं। अब ठीक है, एक का विवाह कुछ उसको मिल गया, दूसरे का विवाह कुछ उसको मिल गया, ये संख्या इनकी जानवर की बढ़ती जा रही है। लेकिन 6 साल और काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तब कुछ और होने लगा। 29 अध्याय के 31 पद से लेकर लगभग पूरे 30 अध्याय तक हम अब इनके परिवारों को बढ़ना देखते हैं। याकूब की संतान, अब उस समय याकूब के पास उसकी पत्नी लिया है, याकूब की पत्नी राहेल है, और उस समय ऐसा भी होता था कि उनके साथ उनकी दाई भी साथ में रहती थी, सेविकाएं भी साथ में रहती थी, और उनका भी आधा हक वही होता था। और इसीलिए जो याकूब से संतान हुई, 7 संतान लिया से हुई, 7 संतान लिया से जो पहली थी, और राहेल से 2 संतान हुई, उसके बाद ज़िल्पा जो दूसरी उसकी नौकरानी थी उससे 2 संतान हुई, और बिला है एक नौकरानी उससे 2 संतान हुई। तब आगे चल के राहेल से हम केवल 2 संतानों को पाते हैं। लिया से 7 संतान हैं, लेकिन राहेल से केवल 2 संतान हैं। उनका वर्णन इन सब कुछ में पाया जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आगे चलते हैं, तो याकूब 20 साल तक क्या कर रहा है, और उसको बार बार उसका धोखे का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालिए गलतियों 6 अध्याय के 7 और 8 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। आप अपने विचारों को बोएंगे, क्रियाओं को काटेंगे, क्रियाओं को बोएंगे, आदतों को काटेंगे, आदतों को बोएंगे, चरित्र को काटेंगे, चरित्र को बोएंगे, अनंत को काटेंगे। जो जैसा बोता है वो वैसे ही काटेगा। याकूब जो बो रहा है उसको उसको सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न यह है, यदि मैंने और आपने प्रभु को पाया है तो मैं और आप आज क्या बोल रहे हैं, मैं और आप क्या बोल रहे हैं। और बहुत ही दिखा मैं सावधान रहा हूं, और इसीलिए ओबदया 1:15 में लिखा हुआ है, ओबदया 1:15 में, जैसा तूने किया है तेरे सिर पर वैसा ही लौटा दिया जाएगा। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, اور وہ یعقوب کے ساتھ کیسا ویوہار کرا ہے. اب یعقوب آگے بڑھتا ہے, لیکن دیکھیں کیا ہوا. جب ہم آگے دیکھتے ہیں 30-31 ادھیائے میں کا ونشز کا ہے, پر آگے چل کر کے ایک استھتی ایسی آ گئی کہ اب اس کے گھر میں جو پرستھتی ہے وہ سب بگڑنے لگی ہے. مہربانی سے نکالی 31 ادھیائے جینیسس چیپٹر 30 ادھیائے, اور تب کیا ہو رہا ہے 43 پد میں. اس پرکار وہ منشیہ اتیدک سمپن ہو گیا, اس کے پاس بہت ہی بھیڑ بکریاں سیوک سیوکائیں اونٹ اور گدھے ہو گئے. 31 کا پہلا, یعقوب نے سنا کہ لابان کے پتر یہ باتیں کر رہے ہیں. اب کیا ہو گیا اس گھر میں, لابان کے پتر آپس میں بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, یعقوب نے ہمارے پتا کا سب کچھ ہڑپ لیا ہے. پریشم کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے, اس کو دوش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کی محنت سب کچھ ختم ہو گئی ہے. کیا ہوا تھا یعقوب کے ساتھ, شکار کرنے تو ایسا ہو گیا تھا, محنت تو اس نے کری تھی, جنگل میں تو اس نے شکار کیا تھا, جنگل میں لا کے شکار لا کے اس نے پکایا تھا, پتا انتظار کر رہا تھا, لیکن یعقوب نے کیا کہا, اس کی ماں نے خال کپڑے پہنائے, جلدی 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 کر کے اسے آشیش چھین لی, ارتھات ایساو کی اس محنت کو اس نے ترسکار کر دیا, تجھ ٹھہرا دیا. آج وہ بات یہاں پر آ رہی ہے, جیسا تو نے کیا ہے تیرے سر پر لوٹا دیا جائے گا, جو تو نے بویا ہے وہ تم آج کاٹو گے. ہمیں اپنے مسیح جیون میں اس بات میں بہت سادھن ہے, ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے جیون کے دوارا کسی دوسرے کی ایسی ہانی نہ کریں اپنے سوارتھ کے کارن, اپنے سوارتھ کے کارن ہمیں سادھن ہونا ہے. اور یہاں پر ہم اس کے بارے میں دیکھتے, تب کیا ہوا دوسرے پد میں, یعقوب نے لابان کا منہ دیکھ کر تاڑ لیا کہ وہ میرے پتی پہلے جیسا نہیں ہے. بیٹے بیٹے تو گئے لیکن وہ سسر بھی ویسے ہو گیا. اور تب کیا ہوا, تب یہوہ نے یعقوب سے کہا, اب یہوہ نے یعقوب سے کہا, کتنے سال بعد, 20 سال بعد, تب یہوہ نے یعقوب سے کہا 20 سال بعد. 20 سال تک سنگھرش رہا, پریشم رہا, بےجتی سہی, تجھ ٹھہرایا گیا, دھوکہ سہا, چھل سہا, محنت کری, سب کچھ کرا, سب کچھ کرنے بعد پرمیشور نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو کر لے جتنا کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ چل. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا پرمیشور, آپ نے کبھی پتنگ اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہے تو پتنگ جب اڑاتے ہیں تو ڈھیل دیتے ہیں, بہت ڈھیل دیتے ہیں, دوسری پتنگ آ رہی ہوتی ہے ڈھیل دینے والا ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے, اور وہ دوسرا سوچتا ہے کہ اس کی پتنگ جو ہے اب ڈوبنے والی گرنے والی, اسی کے بعد وہ دھڑ سے کھینچے گا اور کٹ سے اس پتنگ کو کاٹے گا, پتنگ کٹ سے نیچے گر جائے گی. آپ کہیں گے انکل کیا بتا رہے ہیں, ہم نہیں جانتے. پرمیشور ہمیں اوسر دیتا ہے, اسی لیے پرمیشور کا وچن کہتا ہے پرمیشور ہر ایک کو من پھراؤ کا اوسر پردان کرتا ہے, تاکہ وہ اپنے پاپ کو جانے, تاکہ اپنے پاپ کو مانے, تاکہ اپنے پاپ کو چھوڑے. پرمیشور ہی کرتا ہے, پرمیشور پریمی پرمیشور ہے, ایک دم سے نہیں مار دیتا لیکن انوشاسن ضرور کرتا ہے. اب 20 سال بعد اب اس کی استھتی آ رہی ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے میرے سسر کا چہرہ اب وہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ پہلے سے میرے آنندت رہتا تھا, یہ جو میری پتنی کے جو بھائی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دھن ہم سے لے لیا ہے, ایسا کر لیا ہے, ایسا کر لیا ہے, یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن تب پرمیشور اس سے بات کرتا ہے, لکھا ہوا ہے تب یہوہ نے یعقوب سے کہا اپنے پوروجوں کے دیش اور اپنے اپنے سمبندیوں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا. یعقوب تو نے 20 سال اپنی مرضی سے جیون ویتیت کر لیا, تو نے سوچا تھا تو اپنی اچھا سے سب کچھ پراپت کر لے گا, तू शायद बहुत संपत्ति प्राप्त कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, तू अपने तूने अपने देश को भूला, तू अपने घर को भूला, तू अपने माँ बाप को भूला, तू अपने सब कुछ को भूला और तू यहां पर आ गए, सब कुछ तुझे बहुत मिलेगा मेरे प्रियो। लेकिन फिर परमेश्वर से कह रहा है, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, 20 साल बाद परमेश्वर की आवाज में उसके पास आती है। कई बार हमारे जीवन में जब हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें सुनाई नहीं देता परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है, क्योंकि शायद परमेश्वर ने जब बोला, परमेश्वर जब समझाया, परमेश्वर जब कुछ वो करा, हम हट्टी बन गए, हमने अपने कानों में रुई डाल ली, हमने शायद वो निर्णय नहीं लिया जो परमेश्वर चाह रहा था। परमेश्वर कह रहा था तुम अपने सादा से छूट जाओ, छोड़ दो इसको, पाप से छूट जाओ, ऐसा कर लो, ये कर लो, पश्चाताप कर लो, हमने ना तो सुना, ना हमने माना, ना हमने छोड़ा, परमेश्वर ने बोलना ही बंद कर दिया। और ये बहुत ही दुखदायी पीरियड होता है एक मसीह जीवन में, जब परमेश्वर बोलना बंद कर दे। और मुझे और आपको सावधान रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आंसू बहाने, कहना है प्रभु आप हमसे बात करिए, आपका वचन हमसे बात करे, मुझसे आप बात करिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरे पास अपनी शक्ति नहीं है, मेरे पास अपनी सामर्थ नहीं है। याकूब अपनी सामर्थ में होकर आगे बढ़ा था, अभी तक वो नहीं आना था कि तुम मुझसे होकर अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने यही अपने शिष्य से कहा था कि तुम मुझसे अलग होकर, यौहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 5-7 पद में, कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करना, करके सब कुछ काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा, इसने तो करा ही नहीं था। और कई बार हम भी उसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। तब आगे हम बढ़ते हैं, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके साथ साथ 4 पद में, अतः याकूब ने राहेल और लिया को बुलाया। अब देखिए, अब याकूब को जब परमेश्वर ने इसमें बोला है, अब याकूब जागृत हुआ है, अब याकूब सोच रहा है, जब परिस्थिति ने उसको झकझोर दिया, जब परिस्थिति ने उसको तोड़ दिया, जब परिस्थिति ने उसको विफल कर दिया, जब ऐसा हो गया वो हार गया, तब उसकी सोच में बदल आ रहा है, उसके विचारों में बदल आ रहा है, उसकी योजना में बदल आ रहा है, उसके कार्य में बदलाव आ रहा है। तब वो कहता है, तब उसने अपनी सब पत्नियों को बुलाया और सबको बुला के कहा, 5वें पद में, और उसने कहा मैं देखता हूं कि तुम्हारे पिता का व्यवहार मेरे प्रति पहले जैसा नहीं है, परंतु मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ रहता आया है। कितना अद्भुत है, यद्यपि वो परमेश्वर को जैसा आदर देना चाहिए था नहीं दे रहा है, लेकिन आज इस स्थान पर पहुंच गया, समझ पाया है कि जैसी भी परिस्थिति में रहूं, अगर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ ना रहता तो इन सारी कठिन परिस्थिति में मैं संभाला नहीं जाता हूं। शायद जानवर उसको हत्या कर देते जब गांव में था, उसकी रक्षा। और मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर करा था कि 4 बातें परमेश्वर ने कही थी, कहा था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे संभालूंगा। 4 बातें हमने उस बात में देखी थी, और उसमें एक था कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। और अब वो याद कर रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा किया, और तो कहता है तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की, पर तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, फिर भी यहोवा ने मेरी हानि नहीं करनी। लाबान ने 10 बार उसकी मजदूरी को बदला है, और ताकि वो इस तरह से कि किसी ना किसी प्रकार से याकूब को जो है वो घटी में आ जाए, याकूब गिर जाए, याकूब असफल हो जाए। लेकिन अब वो कह रहा है फिर भी मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है, मेरे परमेश्वर ने संभाल के रखा है। अब उसके हृदय में एक इच्छा जागृत हो रही है। तब आगे चल करके, तब ये सब कुछ होता है, तब वो लाबान के पास जाता है, और तब 13 पद में कुछ कहते हुए आगे वर्णन करते हुए बात करता हुआ है, तब वो कहता है 13 पद में, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं। कि वो बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था, क्योंकि लाबान तेरे साथ जो कुछ करता आया है वो सब मैंने देखा है, और मैं उस बेतेल का परमेश्वर यह हूं जहां तू ने एक खंभे का तेल डालकर उसका अभिषेक किया था और मेरी मन्नत मानी थी, अब उठ इस देश को छोड़कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। अब ये इसने सब सारी बातों को बताया और तब विस्तार के साथ इसने रायल से और लिया से दोनों से पूरी सब बातें बताई। अब आज ताजुब करेंगे, याकूब बात करता है तो वो अधिकतर पहले राहेल का नाम लेता है। लेकिन क्या हुआ, 16 पद, अवश्य ही वो सब धन जिससे परमेश्वर ने हमारे पिता से ले लिया है, हमारा और हमारे बच्चों का है। अतः अब जो परमेश्वर ने तुझे तुझसे कहा है वही कर। अब ये दोनों लिया भी और राहेल भी याकूब के साथ हैं, कह रहे हैं जो कुछ तुझसे परमेश्वर ने कहा है तू कर, हम तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे साथ जाएंगे। और तब उसके बाद ये सारे वर्णन करते हैं। अब उसको डर था, बार बार कहता है डर के मारे। उसको डर था कि अगर लाबान के सामने वो निकल कर जाएगा तो लाबान उसको घात ना कर दे, लाबान उसको मार ना दे। और इसलिए उसने ऐसा देखा, जब लाबान कुछ समय के लिए दूर गया था तब उसने अपने सारे सामान को बटोरा, अपनी इन पत्नियों को बटोरा, बच्चों को बटोरा और तब निकल के आगे बढ़ गए। जब निकल कर आगे बढ़ गए और लाबान वापस आया, लाबान कहता है मेरे कहाँ है, मेरी बेटी नहीं है, उनकी धन संपत्ति नहीं है, ये तो सबके सब चले गए, कहाँ चले गए। अब ये वापिस लौट कर जा रहे हैं और तब लाबान उनके पीछे भागता है और 7 दिन तक पीछा करके उनको जा पकड़ता है। और जब पकड़ता है तो लाबान उनसे पूछता है, सब कुछ तो लेकर गए थे लेकिन एक और चीज थी जिसको राहेल ने छिपा कर रखा था। वो क्या थी, वो लाबान के घर की मूर्तियां थी। इसीलिए मैंने कहा था कि लाबान जो है वो आइडल वर्शिपर था, मूर्ति पूजा करता था। और तब जब वो ढूंढने लगा तो राहेल ने बहाना बनाया, जहां वो खच्चर में बैठी थी उससे नहीं उतरी, उसने बहाना बनाया और वो देखा दाखा। तब उल्टा याकूब को भी नहीं मालूम था कि राहेल साथ साथ आ रही है, लेकिन राहेल साथ साथ आते हुए उस अपने घर के देवी देवताओं को भी लेते चली आ रही है। मेरे प्रिय सावधान रहिए, मैंने पिछली बार कहा था अगर आप अन्य जाति से विवाह करेंगे आप नहीं जानते वो अन्य जाति आपके अपनी देवी देवताओं को लेकर आपके घर में आ जाए, बहुत खतरनाक बात है। मैं बार बार जवान बच्चों को समझाता हूं, सावधान रहिए। याकूब को नहीं मालूम है कि वो क्या करके जा रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ करके जा रही है। और तब फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे देखिए 41 पद, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तक तो 2 बेटियों के लिए और 6 वर्ष तक तेरी भेड़ बकरियों के लिए मैंने तेरी सेवा करी और तूने मेरी मजदूरी 10 बार बदल डाली। यदि मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर जिसका भय इजाक भी मानता है मेरी ओर ना होता तो तू निश्चय ही अब मुझे खाली हाथ भगा देता। परमेश्वर ने मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखा है, इसलिए उसने कल रात में तुझे झिड़का है। लाबान को परमेश्वर ने बीच में पढ़ेंगे तो डांटा था कि तू याकूब के साथ कुछ मत करना। अब क्या हो रहा है, याकूब के जीवन में विश्वास का कार्य बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी याकूब मेरा परमेश्वर कह के नहीं संबोधित कर रहा है, अभी भी याकूब कह रहा है मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर वो जिसको मानता था वो है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दुख को और मेरे हाथों के परिश्रम को देखा है। ये जान रहा है कि परमेश्वर उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये 20 साल उसके लिए एक अनुशासन के साल थे, ये 20 साल उसको मोल्ड करने के लिए थे, ये 20 साल उसको एक कुमार उस पात्र को बना रहा है। और कई बार हमारी जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमें पूछना है प्रभु क्या इसमें तू सिखाना चाह रहा है, क्या वो हमें मोल्ड कर रहा है, क्या कुछ हमसे कहना चाह रहा है, क्या कुछ हमें चाह रहा हम नहीं कर पा रहे, वो हमसे व्यवहार। परमेश्वर हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वो निरंतर हमसे व्यवहार करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना तो सोता है ना कभी जागता है। उसकी चिंता, उसका प्रेम, اس کی چاہنا، اس کا لگاؤ اپنے لوگوں کے ہر کھن ہر پرتی بنا رہتا ہے. یعقوب کے ساتھ پرمیشور ویوہار کر رہا ہے. اور تب آگے چل کر کے اب ایک مکھی استھان پر آتے ہیں. کیا استھان ہے؟ جب یہ سب کچھ ہوا 44 پد میں، تب آ اور میں اور تو ایک واجہ باندھے اور جو میرے اور تیرے بیچ میں ساکشی رہے. تب یعقوب نے ایک پتھر لیا اور اسے کھمبے کے سامان کھڑا کیا. یہ دوسرا پلر ہے، پلر آف سیپریشن، الگاؤ کا کھمبا. تب یعقوب نے اپنے کٹمبے سے کہا پتھر اکٹھا کرو، اور انہیں پتھر اکٹھا کر کے ایک ڈھیر لگایا اور انہیں وہاں ڈھیر پر بھوجن کیا. اور لابان نے اس استھان کا نام یہ رکھا، یعقوب نے رکھا، اور وہ کہہ رہا یہ ڈھیر آج میرے اور تیرے بیچ میں ساکشی ٹھہرے. اور 49 ورس. اور مصپہ میں، کیونکہ اس نے کہا جب ہم ایک دوسرے سے الگ رہیں، ہم جب ہم ایک دوسرے سے الگ رہیں تب یہوہ میری اور تیری چوکسی کرتا رہا. اور اس کے بعد یہ وہاں سے الگ ہو گئے، الگاؤ. تب اگر آگے پڑھیں گے تب وہاں لابان اٹھتا ہے، واپس جلا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب لابان تیرے سے کوئی سمبندھ نہیں ہے. لابان کہتا ہے یعقوب آج تیرے سے کیوں؟ لابان ابھی تک یعقوب کو ایک چیز اور نہیں معلوم ہے. وہ جان رہا ہے کہ لابان سے تو الگ ہو گئے ہیں. لابان سنسار کو دکھا رہا ہے، کیونکہ سنسار کے ساتھ لابان اس جیتے پرمیشور کو اس طرح نہیں جانتا تھا، وہ مورتی پوچھ سکتا. اس نے اپنے آپ کو یعقوب نے الگ کیا. کرسچن لائف از لائف آف سیپریشن. مسیح جیون ایک الگاؤ کا جیون ہے. اور میرے پریو اتپتی میں آئیے، اتپتی اس کا پہلا ادھیائے ہے. اب پرمیشور سنسار کی سرشٹی کر رہا ہے اور سرشٹی کا آرمبھ ہوا. پہلا ادھیائے اس کا 3 پد اور 4 پد. تب پرمیشور نے کہا اجیالا ہو، اور اجیالا ہو گیا. 14 پد. پرمیشور نے دیکھا اجیالا اچھا ہے، اور پرمیشور نے اجیالے کو اندھیرے سے الگ کیا. پرمیشور نے اجیالے کو اندھیرے سے الگ کیا. گاڈ ایک کرسچن لائف، مسیح جیون، انکار سے الگ ہو کر جیوتی میں پرویش کر کے جیوتی میں چلنے والا ہے. کٹنائیاں آ سکتی ہیں، سمسیاں آ سکتی ہیں، وہی سمے میں اپنے پرمیشور کو جاننے کا سمے ہے، وہی پرمیشور کو ہمیں پرمیشور کو پہچانے کا سمے ہے. میرے پیو میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کئی بار، کھما کیجیے گا، معاف کیجیے گا، چونکہ میں اس فلانے پریوار سے آیا ہوں اس لیے مجھے زیادہ سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہیں، کوئی بھی پریوار سے، کوئی بھی بیک گراؤنڈ سے، چاہے انیہ جاتی پرسبھومی سے ہوں، چاہے نامدار کرسچن پریوار سے ہوں، چاہے کسی پریوار سے ہوں، پہلے جب تک آپ پربھو میں نہیں تھے، کسی بھی پربھو میں تھے، آپ سنسار کے تھے اور انیہ جاتی تھے. میں انیہ جاتی تھا، جب تک میں پربھو کو نہیں جانتا تھا میں انیہ جاتی تھا. اور جب نرنے لینا ہے، الگاؤ کرنا ہے، تو میں سامنا کرنا ہے. شما کیجیے میں اپنے ساکشی کو دے رہا ہوں، اکثر بہت سارے انوبھو پربھو نے دیے ہیں. اور تب اس کے بعد جب میں پربھو میں بڑھنے لگا، میرا ایک متر تھا، میں شاید پہلے بتا چکا ہوں، میں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رکھتا، لمبی کہانی ہے. اور ایک دن وہ متر مجھے راستے میں اس نے گھیرا، ہاکی سے پٹائی کری، آج وہ 5 ٹانکے کے نشان ہے. لیکن جب تک میں اس سے بالکل الگ نہیں ہوا میں مسیح کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. جس دن میں اس سے الگ ہو گیا، پرمیشور کا دھنیواد ہو، اس لیے آج میں یہاں پر کھڑا ہوں، نہیں تو کبھی نہیں کھڑا ہو پاتا. اور مسیح جیون میں ہمیں الگاؤ میں آنا ہے، لڑ کے نہیں، جھگڑا کر کے نہیں. دوسری بات ہے، اس کا طریقہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن کرسچن لائف جو ہے وہ الگاؤ کا جیون ہے. آرم سے اس بات کو دیکھتے ہیں. پولس کہتا ہے مسیح نے مجھے سوسماچار کے لیے پرتھک کیا، الگ کیا ہے. تب اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آگے یہ سب کچھ ہوا. اب وہ الگ ہوتا ہے اور وہ آگے چل کے پرمیشور کا نیائے کرتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب آگے چلے ہیں، اب میرے ساتھ نکالیے اسی ادھیائے کے ہم آگے پڑھیں گے. تب 9 پد میں 32 का 9 पद। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, एक से अलगाव हुआ, अब दूसरा एक व्यक्ति है जिसका उनको सामना करना पड़ा है। वो दूसरा व्यक्ति उसका भाई एसाव है। एसाव से एक दिन भागा था और एसाव के कारण उसके अंदर डर बसा हुआ है, डर बसा हुआ है। लेकिन चूंकि अब उसको वहां जाना है, परमेश्वर ने कहा तो वहां जा। और अब इसने क्या करा, ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अभी भी याकूब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, अपनी योजना बना रहा है। उसके अंदर डर बैठा है, मैं जाऊंगा तो मेरा भाई मुझे मारेगा क्योंकि मैंने धोखा किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने उसके अंदर। और भय, भाई का भय उसके अंदर इतना सतारा, उसने प्लानिंग बनाने शुरू करी। और नौ पद में क्या कहता है, याकूब ने कहा हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना कर रहा है। यहां पर पहली बार याकूब किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरे दादा इब्राहिम, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में अपने संबंधी के पास लौट जा और मैं तुझे संपन्न करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों को योग्य नहीं हूं। अब एक और उसके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है, उसने मेरी रक्षा की है, अब जो कुछ भी मैं इसी योग्य नहीं क्योंकि मैंने तो छल किया था, मैंने तो पाप किया था, मैंने तो धोखा दिया था, मैं इसी योग्य नहीं था कि तेरी करुणा मुझे हो। ओ क्या परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नहीं कहता, हम तो पाप में इतने दलदल में फंस चुके थे, हम योग्य नहीं थे कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, पर परमेश्वर का धन्यवाद उसकी करुणा उसकी दया के लिए जिसमें होकर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। उस पाप के कारण हमारे लिए दंड ठहराया जा चुका था क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो उस दंड को उस यीशु ने मेरे लिए ले लिया। मैं योग्य नहीं था कि उसकी करुणा मेरे पर की जा सके, आप योग्य नहीं थे कि उसकी करुणा आपके पर की जा सके, फिर भी उसने करुणा की है, फिर भी उसने दया की है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब उसके हृदय में परमेश्वर की करुणा याद आ रही है, परमेश्वर की दया याद आ रही है। अब उसके मन में आ रहा है कि परमेश्वर ने मेरे पर कैसी करुणा की है, और तब वो प्रार्थना करते हुए कहा है, ये कहा है, मैं तो तेरी सब करुणा सब सच्चाई के उन कामों को योग्य नहीं जो तूने अपने दास पर प्रकट किए, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यर्दन के पार गया था और अब मेरे पास तो दो दल है। तब उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके सब कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के साथ साथ अपनी योजना बना रहा है। और तब उसने 400 जनों का दल करा और करके उसने आगे भेज दिया कि ऐसा आ रहा है, उसने आपको खबर पहुंचा दी दो दूतों के साथ कि ऐसा कि तेरा भाई याकूब आ रहा है, या ऐसा को भी मालूम चला कि याकूब आ रहा है, ऐसा भी उससे मिलने के लिए तैयार हुआ, ऐसा भी मिलने के तैयार हुआ। लेकिन जब उसको मालूम चला कि एसाव भी दल के साथ आ रहा है तो याकूब बहुत डर गया, और उसके बाद उसने पहले 400 उसने कहा कि ठीक है, जब मरेंगे तो पहले वो मरेंगे, बाद में देखूंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन आगे गए, तब उसके बाद आगे चल चल के फिर क्या हुआ, 22 पद में, तब उसने और कुछ करा, तब उसने उसके बाद क्या करा, फिर वो उसी रात को उठकर अपनी दोनों पत्नियां और दोनों दासियों और 11 पुत्रों को लेकर यबोक नदी के घाट के पार गया, उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। लेकिन अब यहां पर एक बात हुई, तब याकूब अकेला रह गया। 24 पद में अब याकूब अकेला रह गया, उसकी पत्नी, उसकी बच्ची, उसके संतानें, उसकी संपत्ति, कोई उसके साथ नहीं। ये नहीं कि उसके अंदर उसके लिए प्रेम नहीं था, लेकिन मसीह जीवन में अनेकों बार परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला आना जरूरी है। और जब अकेला रह गया तब क्या हुआ, तब याकूब अकेला रह गया और तब एक पुरुष ने आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। अब यहां पर एहसास से भी मिला नहीं है, केवल एक सेपरेशन, पहला सेपरेशन है जो लाबान से है। और तब उसके बाद आगे बढ़ते हुए उसने कहा, और रात भर उसने संघर्ष करा, सब कुछ हुआ, और तब क्या हुआ 28 पद में, तब उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं छोड़ूंगा नहीं। रात भर याकूब उस दूत से कुश्ती लड़ता रहा और उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तब उसने एक बड़ी आशीष दी, کیا آشیش دی؟ اس کا نام بدل گیا، جیون بدل رہا ہے، اچھا بدل رہی ہے، سوچ بدل رہا ہے، وشواس بدل رہا ہے، سواب بدل رہا ہے، اور اب اس کے بعد پرمیشن نے اس کو ایک نام پریورتت کر کے دے دیا، اور یہ ایسا نام دے دیا جو نام پورے سنسار میں وچلت ہو گیا. اور اس نے کہا آج سے تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو پرمیشن سے اور منوش سے لڑ کر پربل ہوا ہے. اور تب اس کے بعد اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ لیکن سب کچھ کے بعد ایک گھٹنا اور گھٹ گئی. گھٹنا کیا گھٹ گئی؟ جب وہ دود صبح صبح گیا تو اس کی جان کی نس کو وہ ایسا دبا گیا کہ یعقوب لنگڑا ہو گیا. کیوں لنگڑا ہو گیا یعقوب؟ اب اس کو چلنے میں مشکل. ایک سمے تو لاٹھی لے کر دوڑا چلا آیا تھا، دوڑ رہا تھا، سب کچھ تھا، اپنی سامرتھ میں، اپنی شکتی میں، اپنے بلب میں، اپنی یوجنا میں، اپنی بدھی میں، اپنے آپ پر نربھر تھا. پرمیشور نے کہہ دیا یعقوب اب تو اپنے بل پر جیون نہیں ویت کر سکتا. اس کا گھمن ٹوٹ گیا، اس کا بل ٹوٹ گیا، اس کا اہم ٹوٹ گیا، سب کچھ ٹوٹ گیا، اب لنگڑانے لگا. اب اس کو کس کی ضرورت تھی؟ اب اس کو سہارے کی ضرورت تھی جو پرمیشور ہے. اور میرے پریو کئی بار پرمیشور ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں توڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ویوہار کرتا ہے. انوشاسن ضرور ہے، انوشاسن ضرور ہے، انوشاست کرتا ہے. کئی بار ہماری بیماری دربلتائیں بھی انوشاسن کا کارن کرتی ہیں. میں شاید اس دن بتا رہا تھا جب میں کیا نام سے جس دن اٹیک ہوا اور اٹیک میرے کو پڑا، اور رات میں 10 بجے قریب 12-12:30 بجے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی. 10 تاریخ کو میں کیلنڈر پہ گیا، کیلنڈر پہ میں نے کیا نام سے پد دیکھا، ایوب اس کا 5:22. تب بائبل کھولی، پورا پیسج پڑھا، اور تب پیسج پڑھتے ہوئے میں نے اس وچن پر منن کیا. میں نے کچھ باتوں کے لیے پرارتھنا کی پرمیشور نے، پرمیشور نے کچھ باتیں مجھے دکھائیں، سکھائیں. کیوں چہرے پہ میرے کو ایسا ہوا؟ ایک بھائی میرے کو جب بھی ملتے تھے کہتے تھے بھائی رولی آپ جب بھی دکھائی دیتے ہمیشہ ہنسمٹ دکھائی دیتے، آپ کا چہرہ ویسے ہی بنا رہا تھا، سب کچھ. اندر اندر مجھے بہت گھمنڈ ہوتا تھا. مار دیا پربھو نے، سکھا دیا. میں نے پربھو سے کما مانگی، میں نے پربھو میں اپنے شریر پر گھمنڈ کرتا تھا. ہم اپنے آپ میں نربھر نہیں رہ سکتے، نہ اپنی شکتی پر، نہ اپنے صورت پر، نہ ہم کسی چیز پر نہیں رہ سکتے. جب ہم اپنے بل پر جیون زیادہ ویتیت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پربھو نس دبا دیتا ہے. سادھان رہیے. اور تب اس کے بعد ہم یعقوب کے جیون میں جلدی سے ایک دو باتوں کر دیکھیں. جب یہ آگے بڑھا تب خیر احساس سے، اب وہاں احساس سے بھی اگلا ہوتا. سمے کم ہے، میں زیادہ جلدی نہیں جاؤں گا، زیادہ نہیں بڑھوں گا، لیکن اگر پڑھیں گے، دونوں ملتے ہیں، ملنے کے بعد دونوں کہتے ہیں میرے سے بھیٹ لے لے، میرے سے بھیٹ لے لے. کوئی بھیٹ نہیں لیتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے احساس سے بھی الگ ہو جاتے ہیں. احساس سے، احساس سنسارکتا دکھاتا ہے، اس سے الگ ہوا، اس سے الگ ہوا. لیکن انتم میں جلدی سے وہاں بول کر کے میں سماپت کروں گا. 35 ادھیائے میں آئیے. جب آگے بڑھ رہے ہیں 35 ادھیائے کے پہلے میں نے کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا 7 بار یعقوب کو پرمیشور نے درشن دیا ہے، 7 بار ابراہم کو بھی 7 بار دیا. تب 35 ادھیائے میں پہلی بات، تب پرمیشور نے یعقوب سے کہا اٹھ. اب کیا ہوا تھا؟ دھیان دیجیے گا، اب یہاں پر ایک کام اور گڑبڑ ہو گیا. ایسا لوگوں نے اس سے وہیں پر گھر بنا لیا. اس نے کیا کرا؟ یعقوب نے وہیں پر گھر بنا لیا. ایک پت پڑھ لیں گے مرمر سے، 33 ادھیائے 17 پت. یعقوب نے شکوت تک یاترا کی اور وہاں اپنے لیے ایک گھر بنایا تھا، اپنے پشوؤں کے لیے جھوپڑے کھڑے کیے، اسی کارن استھان کا نام شکوت پڑا. اس کو تو جانے کے لیے پتا نے پرمیشور نے کہاں بھیجا تھا؟ کیا کہا تھا؟ تو کہاں چلا جا؟ اپنے پتا کے گھر چلا جا، وہاں چلے جا. لیکن جا رہا تھا سب کچھ، لیکن بیچ میں پھر رک گیا. اور 10 سال یعقوب پھر اس نے ٹائم لگایا. 20 سال کے بعد 10 سال اور یعقوب کو لگے جب وہ پتا کے پاس پہنچتا ہے. تب پھر پرمیشور نے اسے کہا याकूब तुझे यहां नहीं रहना। तब 35 अध्याय में परमेश्वर से कहता है याकूब उठ बेतल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग रहा था एक वेदी बना। और तब क्या हो रहा था, और जब ये चल जब हुआ तो वहां पर याकूब को अब मालूम चल गया कि राहेल अपने घर से क्या लेकर आई है, उन मूर्तियों को लेकर आई, ग्रह देवताओं को लेकर आई है, ग्रह देवताओं को लेकर आई। और तब उसने क्या कहा, जलने की तैयारी से पहले क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा दूसरा पद, इस पर याकूब ने अपने घराने से और लोगों से जो उसके साथ थे, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें निकाल फेंको, पहली बात निकाल फेंको, दूसरी बात अपने आप को शुद्ध करो, तीसरी बात अपने कपड़े बदल डालो, इससे पहले कि तुम बेतल में जाओ, इससे पहले कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, इससे पहले तुम परमेश्वर का दर्शन पाओ, इससे पहले तुम परमेश्वर की आराधना करो अवश्य है। मेरे प्रियो, हमारी कोई आदत हो सकती है, हमारी कोई इच्छा हो सकती है, स्वभाव हो सकता है, कोई और होता है, और याकूब ने जान लिया था, याकूब का स्वयं की इच्छा, उसके स्वयं का उद्देश्य, स्वयं का बचाव, स्वयं की विलासा, स्वयं की धार्मिकता, ये सारी उसकी मूर्तियां थी। लेकिन यहां तो सच में वो लेकर आते, उसने कहा इनको निकाल फेंको, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। संडे को जब बैप्टिज्म क्लास बैठे थे तो मैं एक पद को मैंने उनके साथ बांटा था, जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। और मैं उन बहनों को समझा रहा था जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से प्रभु में आती हैं और अपने पुराने उन सारी चीजों को लेकर, आजकल बहुत सारी चीजें, अरे कल्चर है तो ये है वो है, लेकिन नहीं, वो उन पुराने वस्त्र के समान है जो दूर से दिखाई देते हैं, आपकी पहचान है पुरानी, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो उनको निकाल करके फेंकना है ताकि आप पहचान आपकी बदल जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वचन के अनुसार है। तो ये कहता है करो। तब उसके बाद क्या हुआ, सब इन्होंने इकट्ठा करा, पहली बात जब जमा हो गया चार पद में, इसलिए उन्होंने अन्य जातियों की मूर्तियों को उसके पास थी और अपने अपने कानों के कुंडल याकूब को दिए और याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया जो शकेम में। पहला क्या करा, दफना दिया। पुरानी चीजें, पुराना स्वभाव, पुरानी पहचान, पुराने चीजें सब वो दफना दी जाए। बेतल जा रहे हैं मेरे प्रियो, मुझे और आपको देखना है क्या कोई पुराने स्वभाव है मेरे और आपके अंदर जिसे अभी मैंने दफनाया नहीं, आपने दफनाया नहीं, क्या कोई पुरानी इच्छाएं हैं, क्या पुरानी मनसाएं हैं, क्या पुराना स्वभाव है, कौन सी चीज है जिसको हम लेकर से उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं परमेश्वर के स्थान से उस स्थान में जो बेतल परमेश्वर का निवास स्थान है, जो अनंत काल का स्थान है, जिसके बारे में लगातार प्रकाश वाक में देखते हुए अंत में पहुंचे थे, वो कनान देश, वो स्वर्ग देश जिसके हम यात्रा और मुसाफिर आगे बढ़ रहे हैं, हम उसमें जाने तैयार हैं। मेरे प्रियो कहता इससे आगे बढ़ो, उनको गाड़ डालो। क्या आज आज सुबह परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है, कोई चीज है जिसको आपको निकाल करके गाड़ना है, गाड़ना है, प्रभु से कहिए प्रभु मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आज यीशु के नाम में मैं उसको गाड़ देना चाहता हूँ, गाड़ देना चाहता हूँ। और तब क्या हुआ, कर दिया। और तब उसके बाद आगे बढ़े वो, और तब लिखा हुआ है जब उन्होंने वहां से कूच किया तो उनके चारों ओर नगरों में भय छा गया। किसके नगरों, अब उनके घर, अभी तक याकूब का भय था, अब याकूब के कारण, याकूब के लोगों के कारण उनको भय छा गया, पलट गई स्थिति, पलट गई स्थिति। जब हम परमेश्वर में आते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर स्थिति को बदल देता है, मैंने उस दिन कहा था वो दिशा भी बदल देता है, दशा भी बदल देता है। और तब उसके बाद लिखा है ये सब कुछ हो गया और उन्होंने याकूब के लोगों का पीछा नहीं करा, फिर याकूब उन सब लोगों सहित और जो उसके साथ थे कनान देश के लूज नगर अर्थात बेतल को आया और उसने वहां एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतल रखा क्योंकि वो वह अपने भाई के डर से भागा था तो परमेश्वर ने उसे वहीं दर्शन दिया था। और उसके बाद चार काइंड ऑफ फ्यूनरल कह दीजिए, पहली चीज मूर्ति गाड़ी गई, उसके बाद तीन और चीजों को उसको गाड़ना पड़ा, तीन और चीजों को। अब यहां पर दूसरी चीज है आठवें पद में, और रिबका की दाई दबोरा मर गई और उसे बेतल के नीचे बांझ पेड़ के तले मिट्टी दी गई। अभी तक वो जिंदा थी, दबोरा का कहानी खत्म हो गई थी बीच में, लेकिन उसने याकूब पाला था, याकूब को संभाला था, याकूब के लिए बहुत प्रिय थी याकूब के बहन। याकूब को अभी भी एक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है अंत तक। अब 30 साल बाद वो स्थान पे वापस आया है और 30 साल के बाद अब 13 साल का और समय लगा है। तब इसके बाद दूसरा, तब उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं रायल से एक संतान उत्पन्न होती है, रायल से संतान 18 पद। तब ऐसा हुआ, सॉरी 17 पद, जब वह प्रसव की घोर पीड़ा में थी तो दाया ने उससे कहा, मत डर, इस बार भी तुझे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ वो मर गई और प्राण निकलते समय उसने उसका नाम बेनोनी रखा, परंतु उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। अर्थात राहेल मर गई और एप्राता में उसको बेतलहम के मार्ग में उसे मिट्टी दी गई। तीसरी, तीसरे बरियल, पहली मूर्तियों का बरियल था, दूसरा दाय का बरियल था, तीसरा राहेल का बरियल था, चौथा बरियल देखिए आगे चल के 35 अध्याय के अंत में। तब उसके बाद हम आते हैं 27 पद से, और याकूब अपने पिता इसाक के पास मर्मे में आया और जो क्रियत अरबा अर्थात हेब्रोन है जहां इब्राहिम और इसाक परदेशी होकर रहे थे। इसाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसाक का प्राण छूट गया और वो मर गया और बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। फोर्थ बरियल, चौथा बरियल, 13 साल फिर उसको, लेकिन इन 13 सालों में वो अपने पिता के साथ व्यतीत कर सका। इस समय ऐसा अलग है, लेकिन जब उसको मालूम चला कि उसकी मृत्यु हो गई तब वो वापस आया और दोनों ने मिलकर, मेरे प्रियो याकूब लौट आया, याकूब लौट आया, याकूब लौट आया। क्या आज हम वापस आएंगे? आपने शायद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप कहां चले आ रहे हैं? क्या आज आपको प्रभु के पास वापस आने की जरूरत है? क्या आपको प्रभु के साथ वापस आकर उन्हीं परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है? इन संघर्षों में याकूब कुछ सीख रहा है, तब हम देखते हैं कि याकूब की अंत कितना आशीष में अंत था और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गया। लेकिन एक भगोड़ा वापस आ गया, उड़ाव का पुत्र भाग रहा था, वापस आ गया, क्योंकि जब होश में आया तब वो वापस आया। और जब तक मेरे प्रियो मैं और आप उस पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सच्चाई के साथ होश में नहीं आते, हम वापस नहीं आते। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।